मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 12 सितंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर में और इसके बाद मार्च 2019 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से 4 मित्र हैं जिन्होंने अभी अक्टूबर और नवंबर की क्लासेस के लिए दाखिला लिया है। इन मित्रों के नाम हैं अजय कुमार चौहान, आपका गांव है गढ़ मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। साध्वी सिंह, आपका गांव है पेंगा, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। बबीता कुमारी, आपका गांव है अन्नपूर्णा डूंगरी, जिला टोंक राजस्थान से हैं। चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मार्च 2019 बैच के लिए मैं स्वागत करता हूं राकेश कुमार का, जो जगदीशपुर गांव से हैं और जिनका जिला है शेखपुरा और राज्य है बिहार। तो राकेश, आपका भी मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं फिर से आपसे थोड़ी सी डॉलर बनाम रुपया के बारे में बात करूंगा। डॉलर बनाम रुपया, जिसके बारे में हम लोग कल बातें कर रहे थे, और इनफैक्ट सच यह है कि इसके माध्यम से मैं एक प्रकार से अर्थव्यवस्था पर बात कर रहा हूं, आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र पर बातें कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले आइए कुछ खबरों को देख लेते हैं। कल टीवी न्यूज पर भी आपने, यानी कि डीडी न्यूज पर भी आपने सुना देखा होगा, और आपने रेडियो न्यूज पर भी सुना, अखबारों में उस खबर को उतनी जगह नहीं मिली है, और स्वाभाविक है कि वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट की चीज नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM का जो मानदेय होता था, या मोटे तौर पर कह लीजिए कि जो सैलरी होती थी, उसे बढ़ा दिया गया है, और प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनसे सैटेलाइट चैनल के माध्यम से बातें की हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, कि ये जो बिल्कुल जड़ के स्तर पर काम करने वाले, और वो भी गांव में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और स्पेशली जो महिला कार्यकर्ता हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्रीय विकास में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये महिलाएं हैं तो एक वीमन एम्पावरमेंट इनसे जुड़ा हुआ है, राइट। महिलाओं की समस्याओं को ही ये ज्यादातर देखती हैं, महिला की समस्या, महिलाओं की समस्याएं और बच्चों की समस्याएं, इसमें वही है जैसे पोषण है, प्रसव है, इन सब से जुड़ी और भी जो इस तरह की हेल्थ की जो समस्याएं हैं, इनको देखती हैं, और एक तरीके से काउंसलर का काम करती हैं, घर घर जाती हैं, उन महिलाओं को, बच्चों को समझाती हैं। जो सेंटर बने हुए हैं इनके, आंगनवाड़ी के सेंटर, मैंने बहुत से सेंटर्स ऐसे विजिट किए हैं, आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि आप जाइए, जरा सा उनको देखिए, उनकी कार्यप्रणालियों को समझने की कोशिश कीजिए। तो यह मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिविल सर्विसेज का बन गया है, कि किस तरीके से जो रूट लेवल पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, उन पर हमारे देश का जो विकास है निर्भर करता है। मित्रों, रेडियो की जो दूसरी खबर थी वो शिकागो सम्मेलन के 125 वर्ष पूरे होने पर हमारे उपराष्ट्रपति जी शिकागो गए हुए हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो स्टेट सिविल सर्विस है या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, उस लिहाज से इसे महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं। खासकर 11 सितंबर 1893, मतलब 125 साल पूरे हो गए, को शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे यहां से विवेकानंद जी गए थे, और उसमें उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद से आप कह लीजिए कि न केवल विवेकानंद जी ही विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गए, बल्कि भारत की भी इससे बहुत अधिक प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि भारतीय दर्शन को पहली बार विश्व स्तर पर इस रूप में समझा जा सका, क्योंकि वो विश्व धर्म सम्मेलन था। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटेन का अधिकार था, और जो यूरोपीय देश थे वो खासकर विकासशील देशों को और एशियाई देशों को तो असभ्य और असंस्कृत और कूड़े का ढेर, पता नहीं क्या क्या मानते रहते थे। तो अगर आपको समय मिले तो इस भाषण को आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यूं कह लीजिए कि भारतीय दर्शन का सार तो इसमें आपको मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, दो एडिटोरियल कमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का और एक दैनिक भास्कर का। खासकर एक बार फिर से भारत और नेपाल के संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तनाव की स्थिति इस रूप में कि नेपाल ने चीन के साथ युद्ध का अभ्यास करने का फैसला किया, और दूसरी बात यह है कि भारत के साथ जो बिम्स्टेक सम्मेलन जो अभी नेपाल में हुआ था उसके साथ मिलकर के जो सैन्य अभ्यास करना था उससे उसने मनाही कर दी है। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसका साफ मतलब है कि नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और नेपाल हमारे बिल्कुल बॉर्डर में है, चीन भी पास में ही है, उसके दूर नहीं है। और चूंकि नेपाल भारत का बहुत पुराना मित्र राष्ट्र रहा है और चीन और नेपाल की यह दोस्ती भारत के लिए कहीं ना कहीं सतर्क हो जाने वाली है, तो यह एक ये कह लीजिए कि एक चिंतनीय विषय है। इसको लेकर के मैं एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने ढंग से देख लीजिएगा, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक और एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसमें है सेवा प्रदाता पर, सर्विस डिलीवरी। ये जो सेवा प्रदाता जिसे आप हिंदी में कहते हैं, आपका जनरल स्टडीज का मेंस का जो फोर्थ पेपर है उसमें बकायदे एक टॉपिक है कि कैसे सरकारी सेवाएं लोगों को प्रदान की जाए, अच्छे तरीके से प्रदान की जाए। अभी दिल्ली सरकार ने, यानी कि आप राजनीतिक पार्टी ने यह फैसला किया है कि 40 तरह की जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो लोगों को उनके घर पर जाकर उपलब्ध कराई जाएंगी, मतलब सरकारी आदमी उनके घर पर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना था, अब लेने के लिए कलेक्ट करने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको पानी का कनेक्शन चाहिए उसके लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपका राशन कार्ड चाहिए उसके लिए आप चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से 40 सेवाएं आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है और एक यूं कह लीजिए कि एक नई शुरुआत है, एक नवाचार है। भारत में इसका बहुत बड़ा संकट है और यही कारण, एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से करप्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हो सकता है कि इसके सफल होने पर दूसरे राज्य भी इसे फॉलो करें तो लोगों का जीवन भी आसान होगा, खासकर मेट्रो जैसे जगह का, तो जहां लोगों को के लिए कि लोगों के पास समय नहीं होता है, और दूसरा इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लग सकेगा। तो ये एडिटोरियल कमेंट आप जरूर पढ़िएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें आपको इस तथ्य को शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था बिजनेस स्टैंडर्ड का, केरल की बाढ़ में छिपे चेतावनी भरे संदेश। हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरे बिना बताए, कल मैंने जानबूझकर नहीं बताया था, आज आप अपने पढ़ने के तौर तरीके का इसी आधार पर मूल्यांकन कीजिए, क्या आपको लगा कि यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और अगर लगा तो क्या आपने इसके नोट्स तैयार किए, और अगर नोट्स तैयार किए तो क्या पॉइंट वाइज तैयार किए। इस हिसाब से आप सब अपना मूल्यांकन कीजिए। ये मानकर चलिए कि ये ज्योग्राफी का या और पर्यावरण का, दोनों का मान लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सिविल सर्विस की तैयारी फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसी तरीके से की जा सकती है। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। कल मैंने डॉलर और रुपए के बारे में कुछ बातें की थी। दरअसल आज एक आर्टिकल मैं आप सबको दे रहा हूं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का, जिसमें उन्होंने गिरता रुपया और चढ़ता तेल शीर्षक से एक आर्टिकल जो छपा है उसकी कुछ तीन चार बातें मैं आप लोगों के साथ खासकर शेयर करना चाहूंगा, जो थोड़े से अलग तरह के, जो मैंने कल बातें बताई थी वो ऑलरेडी इसमें है, बाद में आपको वो चीजें मिलेंगी। इसमें उन्होंने ये दिया है कि जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है, साल भर पहले जो 64 रुपए का था या वो 72 रुपए का हो गया है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां जो वस्तु का उत्पादन होता है किसी भी वस्तु का, तो उसकी लागत बहुत ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया है, उदाहरण दिया है। आपको मालूम है झुनझुनवाला जी कुछ इसी स्टाइल से लिखते हैं। उन्होंने लिखा है इसमें कि मैं खासकर देखिए इसको दोहरा इसलिए रहा हूं, हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कुछ पॉइंट कि आपको पढ़ने का तरीका यह पता लग जाए कि आपको किन चीजों को पकड़ना है और उसे कैसे समझना है। यही सिविल सर्विस का राज है, यूं कह लीजिए तैयारी का राज है या सफलता का राज है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि एक खिलौना है और एक खिलौना भारत में 50 रुपए में बन रहा है, भारत में उसकी लागत 50 रुपए है, और डॉलर में उसकी लागत, अमेरिका में उसकी लागत $1 है, 1 डॉलर, अमेरिका में जब वो खिलौना बनाया जाता है तो 1 डॉलर कीमत आती है, और भारत में ही जब उस खिलौना बनाया जाता, वही खिलौना, तो 50 रुपए आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 डॉलर की कीमत 50 रुपए हुई। इस तरीके से उन्होंने समझाया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है, राइट। इसका मतलब है कि अगर 64 रुपए का जो 64 रुपए की जो कीमत थी, अब 72 रुपए हो गई। तो अब इस खिलौने पर अप्लाई कर लीजिए कि जो खिलौना साल भर पहले हमारे यहां 64 रुपए में बनता था, अब उसके बनने में 72 रुपए लग रहे हैं। ये उन्होंने समझाया। तो जो उत्पादन लागत है, इसका हल ये हो सकता है कि उत्पादन लागत को घटाया जाए, और जब तक उत्पादन लागत को नहीं घटाया जाएगा, दूसरे तरीके से इसे नहीं संभाला जा सकता। देखिए, संभालने का काम तो इनफैक्ट रिजर्व बैंक करती है। इसको उसका मतलब एक दायित्व में से है कि वो अपने मुद्रा जो प्रणाली है, विनिमय दर को थोड़ा सा मैनेज करके दे रखे, जरूरत पड़ने पर डॉलर बेच दे, जरूरत पड़ने पर रुपया बेच दे, वो अपना इस तरीके से करते हुए। लेकिन कब तक संभालेंगे आप? आफ्टर ऑल आपकी सीमा भी है, आप हमारे पास डॉलर ऐसा तो है नहीं कि फ्रॉड डॉलर है। तो इसमें उन्होंने रीजन बताया कि वो क्या कारण है कि हमारे यहां वस्तु के उत्पादन में लागत ज्यादा आ रही है। और इसके लिए उन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें आपको एक शब्द मिलेगा WEF शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। उसका मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे कह दीजिए कि एनजीओ है। इसका नाम आप सुनते होंगे, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और हर साल शायद जनवरी में एक दावोस सम्मेलन होता है जो बड़ा फेमस होता है और खूब उसकी चर्चा होती है। वो यही करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। उसने भारत के जो उत्पादन लागत ज्यादा है उसकी 3-4 कारण बताए हैं महत्वपूर्ण, जो इन्होंने झुनझुनवाला जी ने कोट किए, और ये आपको नोट कर लेने चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहां नई टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, लोग अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी वो पुराने ढर्रे पर है, नया साइंस आ गया है, नए विषय आ गए हैं, नए तौर तरीके आ गए, उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, तो हमारे लोग उतने टैलेंटेड नहीं है। तीसरी जो बात उन्होंने कही है वो ये है कि हमारे यहां जो श्रम है, जो श्रम जो कानून है, या कह लीजिए जो लेबर मार्केट है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला है, बहुत ही जटिल है। मतलब अभी भी श्रम कानून इस तरह के बने हुए हैं कि आप श्रमिकों को नहीं निकाल सकते, फलाना नहीं कर सकते, तो इससे लागत बढ़ती चली जा रही है। और जबकि हमारे यहां के श्रमिकों की उत्पादन क्षमता चीन की तुलना में आधी है। इसके बारे में हम लोगों ने, ध्यान दीजिए कि पहले भी बात की थी, चीन का एक श्रमिक मान लीजिए कि एक दिन में 2 चीजें बना लेता है, तो भारत का श्रमिक एक ही चीज बना पाता है। तो स्वाभाविक है कि इससे तो वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि हो ही जाएगी। तो ये उन्होंने 3 महत्वपूर्ण रीजन बताए हैं वस्तु के उत्पादन लागत में वृद्धि के। तो उन्होंने कहा है कि जब तक हम वस्तु के उत्पादन लागत में कमी नहीं लाएंगे, तब तक इस तरीके से डॉलर और रुपए की कीमत, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को संभालना मुश्किल होगा। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है मित्रों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इसमें से मुझे एक मेल मिला है अलका यादव का, जो हमारे 6th बैच की स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने सूचित किया है कि उनका UPPSC में स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो अलका जी, आपकी इस सफलता के लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब आपके बहुत ही इससे भी खूबसूरत और बेहतर सफलता और भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। ईमेल लिखने वाले 2 अन्य मित्रों के मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसमें एक है मनोज जोशी और दूसरे हैं राहुल शर्मा लखनऊ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।